पाठ 28 अध्याय 22। आज जब हम अपनी बाइबल खोलकर व्यवस्था विवरण 22 पढ़ रहे हैं तो मुझे याद आता है कि इस पाठ की तैयारी करते समय मैंने सोचा था मैं आधुनिक विश्वासियों को परमेश्वर के इन नियमों के गहन और दूरगामी प्रभाव को समझाने के लिए शब्द कैसे खोजूंगा।
यह बाइबल में उन स्थानों में से एक है जो एक प्रमुख राजमार्ग चौराहे के समान है, क्योंकि यहां बहुत कुछ एक साथ आता है। हमने उत्पत्ति की पुस्तक शुरू करने के बाद से तोरह में इस बिंदु तक पहुंचने में 4 साल बिताए हैं। एक लंबा रास्ता तय किया गया है, बहुत समझ विकसित हुई है और शायद अब हम कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण अंतर्निहित अवधारणाओं के बारे में बात कर सकते हैं जो फैल गई हैं और तोरह के उन हिस्सों को घेर लेती हैं जिनका हमने पहले ही अध्ययन किया है। हम व्यवस्था विवरण 22 में कुछ हफ्ते बिताएंगे। तोरह पढ़ाने में मेरी चुनौती हमेशा यह रही है कि किसी भी समय प्याज की कितनी परतें उतारनी हैं इससे पहले कि पर्याप्त हो जाएं और आगे बढ़ने का समय आ जाए, यह अध्याय विशेष रूप से। लेकिन इस अध्याय के अध्ययन में हमारे सामने एक और चुनौती भी है। मूसा के उपदेश के इस हिस्से की विषय वस्तु से इस तरह कैसे निपटें कि यह हमारी पश्चिमी संवेदनाओं के लिए इतना आक्रामक न हो कि हमारे कान इसके प्रति पूरी तरह से बंद हो जाए, क्योंकि इस अध्याय के मूल में और बाइबल के बहुत बड़े हिस्से में जितना आप सोच सकते हैं मानवीय कामुकता का मामला है। पुराने नियम के गैर यहूदी अनुवादक, जैसा कि हम आज पढ़ते हैं, परिष्कृत शहरी यूरोपीय थे और अपने साथ आरक्षित और शुद्धतावादी यूरोपीय ईसाई मानसिकता, साथ ही सभी यहूदी चीजों के लिए एक छिपी हुई घृणा लेकर आए थे। इसलिए परमेश्वर के वचन में निहित यौन विषय वस्तु का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत छिपा हुआ है और हम इसे अनदेखा कर देते हैं। हमारे समय में, खासकर पश्चिम में, सेक्स को लेकर 2 तरह की चर्चा होती है और बीच का रास्ता बहुत कम है। इसे या तो एक निष्फल और विशुद्ध रूप से व्यावहारिक वैज्ञानिक चिकित्सकीय तरीके से निपटाया जाता है या फिर इसे इतनी संवेदनशील और निजी चीज के रूप में देखा जाता है, और इसलिए असहज माना जाता है कि अधिकांश अच्छे ईसाई वास्तव में इस विषय के इर्द गिर्द ही काम करना चाहते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष आंदोलन सामान्यीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिसे ऐतिहासिक रूप से और बाइबल में विकृत और घृणित यौन प्रथाओं के रूप में देखा गया है। बाइबल की वास्तविकता यह है कि प्राचीन संस्कृतियों में कामुकता को हमसे काफी अलग तरीके से देखा जाता था। यह केवल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था और छिपा हुआ नहीं था, और क्योंकि बड़े परिवारों का होना कबीले और गोत्र के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए मानव प्रजनन से जुड़ी हर चीज एक खुला और सार्वजनिक विषय था जिसे बच्चे कम उम्र में ही समझने लगते थे। चूंकि लगभग हर इब्रानी परिवार काफी हद तक पालतू खेत जानवरों के बीच रहता था, इसलिए सेक्स का कार्य लगातार दिखाई देता था और समझा जाता था, और लोग इसके बारे में संकोच नहीं करते थे। मुझे गलत मत समझिए, उस युग के लोग आम तौर पर सार्वजनिक रूप से अपनी कामुकता के बारे में आज की तुलना में कहीं ज्यादा विनम्र थे। दूसरी ओर, विशेष रूप से छोटे एक कमरे की झोपड़ियों में रहने वाले बड़े परिवारों के लिए या कपड़े और जानवरों की खाल से बने तंबुओं में एक साथ रहने वाले खानाबदोशों के लिए गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण थी और शायद ही कभी पूरी गोपनीयता संभव हो पाती थी। इसलिए मानव कामुकता और इब्रानी समाज में इसकी भूमिका, उनकी भाषा और संस्कृति में अंतर्निहित थी। यह पुराने नियम में शुरू से अंत तक व्याप्त है और इसका प्रयोग अक्सर बहुत बड़े आध्यात्मिक चित्र और सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही यह हमारे दृष्टिकोण से पवित्र शास्त्र में काफी हद तक छिपा हुआ है, क्योंकि हम जो मुहावरेदार अभिव्यक्तियां पढ़ते हैं वे वास्तव में सेक्स के बारे में है, लेकिन हम उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते हैं, और यूरोपीय बाइबल अनुवादकों द्वारा इसे पूरी तरह से छिपाने का स्पष्ट प्रयास, क्योंकि उन्हें यह अपमानजनक लगा। कृपया समझें कि हम जो अध्ययन करेंगे उसका हमारे पब्लिक स्कूल सिस्टम में प्रचलित सेक्स एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि इसका संबंध ईश्वर द्वारा मानव जाति के निर्माण और पुरुषों और महिलाओं के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित भूमिकाओं की पवित्र और पवित्र प्रकृति से है। इसका संबंध एक लिंग के दूसरे लिंग के प्रति कुछ कर्तव्यों, वैध और अवैध मिलन की अवधारणा और मानव कामुकता के अंतर्निहित सिद्धांतों के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीकों से बहुत व्यापक संदर्भ में होने से भी है, जितना हम आम तौर पर सोचते हैं या पहचानते भी नहीं है। तो आइए हम अपनी बाइबल और अपने मन को परमेश्वर के मन और मानव जीवन को व्यवस्थित करने के उसके उद्देश्यों के लिए खोलें। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 22 को साथ मिलकर पढ़ें।
व्यवस्था विवरण अध्याय 22 पूरा पढ़ें।
व्यवस्था विवरण 22 की पहली 5 पदें हमें कुछ ऐसा बताती हैं जिसके बारे में यीशु के भाई याकूब ने बहुत कुछ कहा था सच्चा धर्म। उन्होंने यह कहकर शुरुआत की कि सच्चा धर्म विधवाओं और अनाथों की देखभाल करने में सबसे अच्छा उदाहरण है। इब्रानी समाज में विधवाएं और अनाथ उस युग के सामाजिक रूप से वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जो सबसे कमजोर और सबसे दुर्बल थे। इसके अलावा सच्चे धर्म का पालन करने से व्यक्ति दुनिया के तौर तरीकों से अछूता रहता है। याकूब, संत पौलुस और यीशुआ ने समझाया कि सच्चा धर्म व्यवस्थाओं के प्रति यांत्रिक आज्ञाकारिता के बारे में नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं का पालन करते समय व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली आत्मा ही मायने रखती है। यह उन व्यवस्थाओं का पालन है जो व्यवस्था बनाने वाले के प्रति प्रेम और विश्वास के संदर्भ में किए जाते हैं, जो उस तरह की धार्मिकता उत्पन्न करते हैं जिसकी यहोवा अपने उपासकों से अपेक्षा करता है। अमेरिका में हमारे पास एक व्यवस्था कहावत है जिसके अनुसार हम व्यवस्था के अक्षर को व्यवस्था की आत्मा से अलग करने का जोखिम उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति न्याय के अक्षर के अनुसार न्याय चाहता है लेकिन आवश्यक भावना के बिना, तो प्रेम, दया और न्याय खो सकता है। यदि यह हमारी मानव निर्मित न्याय प्रणाली में सच है तो यह परमेश्वर द्वारा निर्धारित तोरह प्रणाली में कहीं अधिक सच है। इसलिए विशेष रूप से व्यवस्था विवरण 22 के इन पहले 5 पदों के संबंध में निर्देश उपासक के समग्र दृष्टिकोण के इर्द गिर्द घूमते हैं। यहां हम अपराध के नियमों के विशिष्ट सूत्र को नहीं देखते हैं जिसे हम तोरह में देखने के आदी हैं। हम यह नहीं देखते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा होगा, और ईश्वर के साथ शांति में लौटने के लिए आपको इस तरह के बलिदान के माध्यम से प्रायश्चित करना होगा। इसके बजाय ये नियम मसीहा द्वारा बताई गई भावना के अनुसार किए जाते हैं, जो तोरह के सभी आदेशों और नियमों का आधार है। अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपने ईश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अपने पड़ोसी से प्रेम करना कोई नियम या विनियमन नहीं है। यह कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसका उल्लंघन करने पर कोई सीधा परिणाम हो। यह उन सभी के लिए एक आह्वान है जो यहोवा को अपना ईश्वर कहते हैं कि वे पवित्र मानसिकता रखें। यह एक अनुस्मारक है कि पवित्रता के लिए प्रयास करना व्यवस्था का लक्ष्य है, और इस तरह की पवित्रता पृथ्वी पर मानव इतिहास के इस युग में अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करके व्यक्त की जाती है। अपने पड़ीडी हौसी से खुद की तरह प्यार करने का पहला उदाहरण व्यावहारिक अनुप्रयोग में इस बारे में है कि अगर आपके भाई का बैल या भेड़ भटक जाए और आप उन जानवरों से टकरा जाए तो क्या होगा। भाई शब्द के इस्तेमाल पर ध्यान दें जो किसी के पड़ीड हौसी के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। इब्रानी में यह शब्द आंख है और यह तकनीकी रूप से एक रिश्तेदार को संदर्भित करता है। यहां जिस अर्थ में इसका मतलब है उसका मतलब आपके कबीले या गोत्र का सदस्य है, और व्यापक अर्थ में आपके राष्ट्र इज़राइल का सदस्य है। बाद में यीशु ने समझाया कि प्रभु की नजर में आपका भाई जरूरतमंदों की मदद करता है, और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अच्छे सामरी के उदाहरण का इस्तेमाल किया। हालांकि सख्त अर्थों में यह अंश आसानी से पढ़ा जा सकता है, तुम्हें किसी साथी इजरायली के बैल या भेड़ को भटकते हुए नहीं देखना चाहिए। और प्रभु कहते हैं कि जब आप किसी भाई के पालतू जानवरों को भटकते हुए देखते हैं तो आपके पास निष्क्रियता का विकल्प नहीं होता। कोई भी व्यक्ति उस परिस्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकता जिसे वह जानता है कि वह सक्रिय मदद की मांग करता है, भले ही यह मदद व्यक्तिगत लाभ की न हो।
अवधारणा यह है कि किसी अन्य इंसान, विशेष रूप से अपने आंख, अपने भाई की जरूरत के प्रति उदासीनता यहोवा को अस्वीकार्य है। दूसरे की जरूरत के प्रति उदासीनता अपने पड़ोसी
से प्रेम करो के विपरीत है। यह नियम वास्तव में अपने पहले रूप में निर्गमन 23 में दिया गया है।
निर्गमन 23 का 4, यदि तुझे अपने शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ मिले तो उसे उसके पास लौटा देना।
इसलिए व्यवस्था विवरण 22 की ये पदें निर्गमन 23 के मूल व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालती हैं। याद करें कि मैंने कई मौकों पर उल्लेख किया है कि व्यवस्था विवरण मूसा का एक उपदेश है और यह उपदेश एक पूर्ववर्ती और प्रतिरूप है जिसका पालन यीशु ने स्वयं पर्वत पर किया। मूसा का यह उपदेश आमतौर पर निर्गमन से एक मूल व्यवस्था लेने और उस पर व्याख्या करने और अक्सर जीवन के अनुप्रयोगों को उदाहरण के रूप में झोरने के रूप में है कि किसी को व्यवस्था को कैसे लागू करना चाहिए।
इसीलिए पद 2 में जटिल स्थिति है कि अगर आपका भाई आवारा जानवर को लेने के लिए आसपास न हो, या अगर वह पास में न रहता हो, या आपको पता न हो कि जानवर का मालिक कौन है, तो क्या करें? उदासीनता अभी भी एक विकल्प नहीं है, न ही यह उस दर्शन के अनुसार चलना स्वीकार्य है जो हम सभी ने बचपन में सीखा था। जो पाता है वह रखवाला होता है, जो हारता है वह रोता है। इसके बजाय किसी को जानवर को पकड़ना चाहिए, उसे घर ले जाना चाहिए और उसे अपने जैसा ही रखना चाहिए और मालिक के उस पर दावा करने का इंतजार करना चाहिए और फिर उसे वापस दे देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जानवर को घर लाने के बारे में वाक्यांश शाब्दिक रूप से निर्देश देता है, इसे अपने घर के अंदर लाओ। और इसका बिल्कुल यही मतलब है, क्योंकि उस युग में और आज भी मध्य पूर्व के कई हिस्सों में एक व्यक्ति का घर एक बाहरी आंगन के चारों ओर बना होता था, या घर 2 स्तरों का होता था। जानवर और इंसान एक साथ पहली मंजिल और आंगन में रहते थे। जानवर मूल्यवान थे, इसलिए उन्हें शिकारियों और चोरों और खराब मौसम से उतना ही बचाना पड़ता था जितना कि परिवार के सदस्यों को। मूसा, जो 3 मिलियन लोगों के नेता के रूप में ने अपने 40 वर्षों के दौरान उनके नेता के रूप में काफी मनोवैज्ञानिक बनना सीखा होगा, क्योंकि वह जानता था कि यह पर्याप्त जानकारी नहीं थी और खामियों की खोज तुरंत शुरू हो जाएगी। इसलिए वह समझाता है कि किसी की खोई हुई संपत्ति को खोजने के बारे में यह रवैया केवल बैलों और भैरों की खोज तक ही सीमित नहीं है, यह गधे, कोट या किसी अन्य चीज से संबंधित है जो किसी और की है। कृपया एक और बात पर ध्यान दें जिस पर यहाँ जोर दिया गया है, जिसे हमने तोरह क्लास में कई मौकों पर हुआ है। अपने पड़ोसी से प्यार करना अपने पड़ोसी के लिए भावनात्मक चिंता या गर्मजोशी महसूस करना नहीं है, यह जरूरत के समय अपने पड़ोसी की सक्रिय रूप से मदद करने के लिए आगे आना है।
पद 4 में अगला नियम है जो पिछले नियम से संबंधित है। यदि आप अपने भाई के बोझा ढोने वाले पशु को उसके भार के नीचे गिरते हुए देखते हैं तो आपको पशु की सहायता करनी चाहिए। पिछला नियम आपके भाई की भलाई के लिए चिंता के बारे में है, यह नियम आपके भाई के पशु की भलाई के लिए चिंता के बारे में है। किसी भी मामले में स्थिति को अनदेखा करना इज़राइल के परमेश्वर के उपासक का उचित रवैया नहीं है। पद 5 में अगला नियम ऐसा है जिसने बहुत बहस को जन्म दिया है। कुछ बहस स्पष्ट रूप से खोखली अकादमिक बकवास है और कुछ स्पष्टता लाने में मदद करती है। शब्द बताते हैं कि एक पुरुष को ऐसी चीजें नहीं पहननी चाहिए जो एक महिला सामान्य रूप से पहनती है और इसके विपरीत। अधिकांश अनुवाद कहते हैं कि यह कपड़ों का जिक्र कर रहा है। वास्तव में अधिक सटीक अनुवाद कपड़े नहीं है बल्कि अधिक व्यापक अनुवाद है, पुरुष या महिला होने से संबंधित चीजें। इसलिए विशेष रूप से उस युग के संबंध में इसका अर्थ युद्ध के हथियार या गहने या हेयर स्टाइल या बेशक वस्त्र हो सकता है। निश्चित रूप से ट्रांसवेस्टिज्म इसके केंद्र में है। आप में से जो लोग दूसरों की तुलना में अधिक सुरक्षित जीवन जीते हैं, उनके लिए हमारे समय में एक ट्रांसवेस्टाइट वह व्यक्ति होता है जो विपरीत लिंग के कपड़े पहनता है, पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं या महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं, लेकिन यह केवल आज हम इसे कैसे देखते हैं। अधिक सही ढंग से यह एक लिंग के व्यक्ति को विपरीत लिंग की विशेषताओं को अपनाने के लिए संदर्भित करता है, चाहे वह उपस्थिति, भूमिका या कपड़े हों। यह सेक्स चेंज ऑपरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि यह भ्रम और धोखे के बारे में है। यह उस लिंग का दिखावा करने या खुद को पहचानने के बारे में है जो आप नहीं हैं। अब मैंने जिस खोखली अकादमिक बकवास की बात की है, वह इस बहस के इर्द गिर्द घूमती है कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहते कि एक लिंग दूसरे का दिखावा करे। वास्तविकता यह है कि इस बहस के पीछे भी अंतर्निहित कारण यह है कि प्रगतिशील और उदार विद्वान यह साबित करना चाहते हैं कि परमेश्वर अब इस तरह के विचलित व्यवहारों को नहीं देखते हैं जिन्हें बाइबल कहती है, जैसा कि यहाँ है कि वे प्रभु के सामने घृणित हैं, अभी भी वैध हैं। जिस तरह चर्च में यह प्रचलित हो गया है कि समलैंगिकता को अब पाप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उसी तरह ये विशेष विद्वान यह कहना चाहते हैं कि ट्रांसवेस्टिज्म जैसा व्यवहार एक निश्चित युग, एक निश्चित संस्कृति तक ही सीमित था, और इसके अलावा मसीह के नए प्रेम के नियम का अर्थ है कि कोई भी व्यवहार जो व्यक्तिगत है और जो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वह अब प्रभु की नजर में ठीक है। या संत पौलुस द्वारा गलातियों 3 में की गई टिप्पणी कि यीशुआ के तहत कोई पुरुष नहीं है और कोई महिला नहीं है, का अर्थ है कि परमेश्वर ने कामुकता की उस पूरी अवधारणा को शून्य कर दिया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि गलातियों में की गई टिप्पणी का अर्थ केवल यह था कि प्रभु के समक्ष एक मनुष्य की आत्मिक स्थिति, चाहे वह व्यक्ति प्रभु को स्वीकार्य हो या अस्वीकार्य, मसीहा के साथ उसके रिश्ते पर निर्भर करती थी, इस बात पर नहीं कि वह व्यक्ति पुरुष था या स्त्री। सिक्के के दूसरे पहलू पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह देखना दिलचस्प है कि प्राचीन समाजों में इस विचार ने पहली बार कहां भूमिका निभाई। हमारे पास ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं कि मेसोपोटामिया की संस्कृतियों में पुरुष पुजारी के लिए कुछ खास महिला वस्त्र पहनना या विशेष रूप से महिला आभूषण पहनना या यहां तक कि महिला सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करके रंगना भी प्रथागत था। जब वह जिस देवता की पूजा कर रहा था वह एक देवी थी। विचार यह था कि महिला देवता की स्त्रैण विशेषताओं के साथ पहचान करने के लिए खुद को एक महिला के रूप में छिपाना था। प्राचीन काल की एक और अच्छी तरह से प्रमाणित परिस्थिति यह थी कि पुरुष महिलाओं की तरह कपड़े पहनते थे और इस उम्मीद में छिप जाते थे कि उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत हमारे पास ऐसी महिलाएं थीं जो अपने बाल छोटे कटवा लेती थीं, पुरुषों के कपड़े और कवच पहनती थीं और पुरुषों के आकार के हथियारों का इस्तेमाल करती थीं ताकि उन्हें पुरुष समझा जा सके, ताकि वे युद्ध में लड़ सकें।
मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पद 5 का यह नियम इस तरह की चीजों को शामिल करता है और इसका इस्तेमाल उन पुरुषों और महिलाओं को सीधे तौर पर रोकने के लिए भी किया जा सकता है जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन असली उद्देश्य सिर्फ इन उदाहरणों से कहीं ज्यादा व्यापक और गहरा था जो मैंने आपको दिए हैं। और जब हम व्यवस्था विवरण 22 में इस व्यवस्था के इर्द गिर्द मौजूद व्यवस्थाओं के संदर्भ को देखते हैं तो उनमें से कुछ स्पष्ट हो जाता है। एक बार फिर ट्रांसवेस्टिज्म के खिलाफ यह व्यवस्था रवैये और दिल की स्थिति के बारे में बात कर रहा है। ईश्वर के नियमों का पालन करने और ब्रह्मांड को जिस तरह से उसने आदेश दिया है उसके प्रति सच्चे रहने की भावना की बात करता है। यहां कम से कम आंशिक रूप से यह धोखे और भ्रम की बात करता है जो परमेश्वर की व्यवस्था में हमेशा बुरा होता है। यह समलैंगिकता की भी बात करता है जो कि दृष्टिकोण और नैतिक विकल्प का भी मामला है। हम बाद में इस गैर व्यवस्था यौन व्यवहार के दूसरे पहलू को देखेंगे। सच्चे धर्म के ये नियम जो उपासक को व्यवस्था की भावना के भीतर काम करने के लिए संदर्भित करते हैं, पद 6 की चेतावनी के साथ जारी रहते हैं जो मां पक्षी को उसके बच्चों के साथ पकड़ने पर रोक लगाता है। इस व्यवस्था के 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला यह कि यह पालतू जानवरों, जैसा कि हमने बैल या गधे के लिए सहायता की आवश्यकता वाले विनियमन में देखा था, जो उसके बोझ के नीचे गिर गया था, के लिए मानवीय सुरक्षा कवच को जंगली जानवरों, इस मामले में एक पक्षी तक बढ़ाता है। इस बात को बताने की आवश्यकता का एक कारण यह है कि एक जंगली पक्षी का एक भेरया गधे या एक बैल के बड़े आर्थिक मूल्य की तुलना में बहुत कम या कोई मूल्य नहीं है। इसलिए प्रभु यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि मानवतावाद का सिद्धांत ईश्वर के सभी प्राणियों तक फैला हुआ है और उनके आर्थिक मूल्य को गौण माना जाना चाहिए। इससे भी अधिक, जैसा कि याकूब कहते हैं कि सच्चा धर्म मानव समाज के सबसे कमजोर और सबसे कम मूल्यवान लोगों की देखभाल करने में प्रदर्शित होता है। यही सिद्धांत पशु जगत के सबसे कमजोर और सबसे कम मूल्यवान लोगों पर भी लागू होता है। दूसरा बिंदु यह है कि माता पिता और बच्चे के रिश्ते के प्रति श्रद्धा केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। रब्बी अक्सर इस व्याख्या का उपयोग व्यवस्था विवरण 14:2 के अजीब व्यवस्था के कारण के रूप में करते हैं, जिसमें कहा गया है कि बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में नहीं उबाला जाना चाहिए। हम माँ पक्षी और उसके बच्चों और मनुष्यों और हमारे बच्चों के बीच के संबंध के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था विवरण के लेखक ने अपनी कथा को इस तरह से संरचित किया है कि वह दोनों को एक परिचित रूप में एक साथ जोड़ता है। scene.jb निर्गमन 20 का 12 की 5वीं आज्ञा को याद करें, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ताकि तुम उस देश में लंबे समय तक रह सको जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। व्यवस्था विवरण 22 का 7 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 22 का 7, तू माँ को तो छोड़ देना परंतु तुम चूजों को अपने लिए ले सकते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो और तुम अपने जीवन को लंबा कर सको।
यह मूलतः 5वीं आज्ञा के समान ही विचार है कि माता पिता के मूल्य और उनकी संतानों के साथ उनके रिश्ते के प्रति उचित सम्मान दिखाने से, माता पक्षी के जीवन को बख्शने से आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप आशीर्वाद के रूप में परमेश्वर के शालोम का अनुभव करेंगे। एक इसराइली के लिए अपने दृष्टिकोण और कार्य में मानवतावादी होने की आवश्यकता का विषय अब एक अन्य प्रकाश में आता है, जिसमें उसे अपने घर की छत के चारों ओर एक दीवार बनाने की आवश्यकता बताई गई है। स्पष्टतः यह उस समय की ओर संकेत है जो कुछ ही महीने दूर था, जब यहोशू इसराइल का नेतृत्व कर कनान पर विजय प्राप्त करेगा और इसराइली अपने तंबू हटाकर स्थायी आवास में रहने लगेंगे।
पैरापेट अनिवार्य रूप से एक बालकनी की रेलिंग होती है जो घर की छत के किनारे पर होती है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति गलती से गिर ना जाए। ठेठ मध्य पूर्वी घर एक सपाट छत का उपयोग करके बनाया गया था और छत अनिवार्य रूप से घर का एक और रहने का क्षेत्र था जिसका उपयोग उसके नीचे के लोगों की तरह किया जाना था। सीढ़ियां इसलिए बनाई गई थी ताकि छत हमेशा सुलभ रहे। छत पर उत्पाद और मछली को सुखाया और संग्रहित किया जाता था, साथ ही एक सुखद दिन पर सामाजिकता की जाती थी या यहां तक कि भट्टी जैसे गर्मियों के महीनों में भी सोया जाता था। इसलिए यह केवल सामान्य ज्ञान था कि छत के किनारों के चारों ओर एक बार बनाई गई थी ताकि कोई व्यक्ति गिर न जाए और गंभीर रूप से घायल न हो या यहां तक कि मर भी न जाए। यह सत्यापित है क्योंकि पद 8 के अंत में घोषित किया गया है कि आध्यात्मिक कारण से यह सावधानी आवश्यक थी, क्योंकि खतरा इतना पर्याप्त था कि उस छत पर रेलिंग न बनाना आपराधिक लापरवाही थी। दूसरे शब्दों में, कोई उचित रूप से उम्मीद कर सकता है कि अंततः कोई उस असुरक्षित छत से गिर जाएगा। दूसरों के कल्याण के लिए इस तरह की बेतहाशा उपेक्षा के परिणाम स्वरूप मृत्यु, घर के मालिक, वहां रहने वाले परिवार और उस समुदाय पर खून का दोष लाएगी जिसकी सरकार ने ईश्वर के इस व्यवस्था को लागू नहीं किया। और अब तक आप सभी को खून के दोष के गंभीर आध्यात्मिक और शारीरिक परिणाम को समझ जाना चाहिए। जिम्मेदार पक्ष को अपना जीवन खोना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने छत पर रेलिंग के बिना घर बनाया, अगर परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह लापरवाही से हत्या का दोषी है। यह एक अन्यायपूर्ण मृत्यु थी और जिम्मेदार पक्ष के जीवन की कीमत भुगतान के रूप में चुकानी होगी।
इसके साथ ही व्यवस्था विवरण 22 का सरल और सीधा भाग समाप्त हो जाता है। यहां से यह जटिल और थोड़ा जोखिम भरा होने लगता है।
अगले कुछ पद हमें उन तीन नियमों के बारे में बताते हैं जिन्हें आम तौर पर अवैध मिश्रण कहा जाता है। हमें पहले से ही एक अवैध मिश्रण दिया गया है, लेकिन इसे एक अलग संदर्भ में कहा गया था, ट्रांसवेस्टिज्म। अवैध का अर्थ है अनाधिकृत, स्वीकृत नहीं, यह किसी चीज का घोर दुरुपयोग है। इसलिए इन तीन निषिद्ध मिश्रणों का विचार, जिन पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही ट्रांसवेस्टाइट से संबंधित एक, यह है कि ये ऐसे संयोजन हैं जो ऐसे संघ बनाते हैं जिनकी कभी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये विभिन्न संघ ईश्वर के सृष्टि के आदेश के विरुद्ध हैं और विद्रोह का एक गंभीर रूप है। ये केवल कार्रवाई ही नहीं है जो मुद्दा है, ये उल्लंघनकर्ता का ईशनिंदा वाला रवैया है जो मामले का सार है।
इस समूह का पहला नियम पद 9 में पाया जाता है। यह है कि किसान को अपने अंगूर के बाग में अंगूर की लताओं की पंक्तियों के बीच स्थित मिट्टी के क्षेत्र में दो प्रकार के बीज नहीं बोने चाहिए। दूसरा नियम पद 10 में है, हल खींचने के लिए बैल और गधे को एक साथ नहीं जोतना चाहिए। और तीसरा नियम पद 11 है, किसी को दो अलग अलग प्रकार के धागों से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऊन और सनी। ये तीन नियम लय व्यवस्था 19 से लिए गए दोहराव और विस्तार हैं।
लय व्यवस्था 19:19, मेरे नियमों का पालन करो, अपने पशुओं को दूसरी जाति के पशुओं से मेल न कराने दो, अपने खेत में दो भिन्न जाति का अन्न न बो और दो भिन्न जाति के धागों से बने कपड़े का वस्त्र न पहनो।
किसी भी तरह का मिश्रण या मिलन जो ईश्वर के व्यवस्था के खिलाफ है उसे इब्रानी में किलायम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक से अधिक प्रकार। इब्रानी लोग इन व्यवस्थाओं के उल्लंघन को इतनी गंभीरता से लेते थे कि उन्होंने तलमूड में इसके लिए एक पूरा ग्रंथ समर्पित किया। इसका नाम है किलायम। फिर भी, यद्यपि वे जानते थे कि यह एक गंभीर मामला था, फिर भी परमेश्वर ने विपरीत लिंग के वस्त्र पहनने, दो प्रकार के बीजों को एक साथ बोने, दो प्रकार की सामग्री से बने वस्त्र पहनने तथा गधे और बैल को एक ही हल में जोतने पर रोक क्यों लगाई, यह बात महानतम रब्बियों के लिए भी रहस्य थी। राशि ने इन्हें केवल ईश्वर के संप्रभु आदेश के रूप में समझाया है, जिसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं इस मामले में राशि की महान विनम्रता को समझता हूं कि वह इन नियमों के कारणों पर गहराई से विचार करने से इनकार कर रही है। मुझे लगता है कि हम कम से कम इस मामले में कुछ और जोड़ सकते हैं, इसलिए अपने दिमाग को साफ करें और अपनी आंखों के सामने कुछ अद्भुत संबंधों को विकसित होते देखने के लिए तैयार हो जाएं। शुरू करने के लिए, अवैध मिश्रणों पर ये चार व्यवस्था 7वें आदेश से जुड़े हैं, व्यभिचार के खिलाफ व्यवस्था। शायद ये आपको अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही आप देखेंगे कि वे और कुछ नहीं हो सकते। मैं फिर से कहता हूं, अनाधिकृत मिश्रणों पर ये व्यवस्था व्यभिचार के कई पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान दें कि विशुद्ध रूप से व्यावहारिक तर्कसंगत दृष्टिकोण से मिश्रण के इन नियमों में से कोई भी किसी को या किसी चीज को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाता है, और वास्तव में कुछ निषिद्ध चीजों को करने से शारीरिक रूप से बहुत लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह लंबे समय से ज्ञात और प्रचलित है कि दो अलग अलग प्रकार के बीज, पौधे, फसलें एक साथ लगाने से सभी प्रकार के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसे अंतर फसल कहा जाता है और इसका उपयोग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां अधिक आदिम क्षेत्रों में खेती की जाती है। कभी कभी एक प्रकार का पौधा एक प्रकार के कीट को आकर्षित करता है जो परागण के उद्देश्य से दोनों प्रकार के पौधों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अन्य उदाहरणों में, एक प्रकार का पौधा एक आवश्यक पोषक तत्व पैदा करता है जिसे दूसरा मिट्टी से लेता है, इस प्रकार मिट्टी की कमी को धीमा करता है। दूसरे स्तर पर, एक ही स्थान पर दो प्रकार की फसलें लगाकर कृषि योग्य भूमि का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है जो सहजीवी हैं और न्यूनतम भूमि का उपयोग करके अधिकतम खाद्य उत्पादन प्रदान करती है। यह दो अलग अलग प्रकार के पौधों को उगाकर
फसल की विफलता से भी बचा सकता है जो प्रत्येक अलग अलग खतरों के प्रति संवेदनशील है।
व्यवस्था विवरण 22:9 अंगूर के बागों में किसी दूसरी किस्म की फसल न बोने का मामला ऐसा है कि अंगूर की बेलों को पंक्तियों में लगाया जाना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह से एक दूसरे से दूर रहें ताकि वे फल फूल सकें। तो उन पंक्तियों के बीच की जमीन की महत्वपूर्ण मात्रा को बर्बाद होने देने से क्या अच्छा उद्देश्य पूरा होता है? परमेश्वर, अगर बेलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कीमती पानी उन बेलों के नीचे उगने वाली सब्जियों या अनाज को पानी देने के लिए दोगुना इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या यह सीमित पर्यावरणीय संसाधनों पर मनुष्य का अच्छा चरवाहा होना नहीं है?
यह भी एक सच्चाई है कि बढ़िया लिनन और ऊन को एक साथ बुनने से सुंदरता और स्थायित्व वाला उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा तैयार होता है। तो फिर परमेश्वर की नजर में यह बुरा क्यों है? महान इब्रानी ऋषियों के मन में ऐसी सामग्री पहनने में कोई सांसारिक दोष या अंतर्निहित बुराई ढूंढना लगभग असंभव था।
फिर भी इस पर रोक लगाने वाला व्यवस्था मौजूद है और इसे गलती या गलत व्याख्या के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह इतना स्पष्ट और सीधा है। इसलिए इस निषेध को सख्ती से अनिवार्य किया गया था और आज तक सबसे पवित्र इब्रानियों द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाता रहा है। क्या बैल और गधे को हल से झोरने में कोई बुराई है? नहीं। शिक्षकों और उपदेशकों द्वारा यह समझाने के सभी प्रयासों के बावजूद कि हल हमेशा कमजोर जानवर की दिशा में घूमेगा या कि मजबूत जानवर कमजोर जानवर को नुकसान पहुंचाएगा या कि यह बहुत ही अक्षम होगा, वास्तविक जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में दो अलग अलग प्रकार के जानवरों द्वारा हल या गाड़ी को एक साथ खींचना प्राचीन दुनिया में बहुत आम बात थी क्योंकि एक आदमी बहुत भाग्यशाली था अगर उसके पास एक बैल और एक गधा होता था। बैल किसी चीज को ढोने से ज्यादा खींचने में सक्षम था लेकिन वह चीजों को ढो सकता था। गधे को चीजों को खींचने से ज्यादा ढोने के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन वह दोनों ही काम कर सकता था। जब हल को दो जानवरों की तुलना में अश्वशक्ति की आवश्यकता होती थी तो प्राचीन लोगों को उन दो जानवरों के साथ मिलकर काम करने में कुछ भी गलत नहीं लगता और सांसारिक दृष्टि से उन बोझा ढोने वाले जानवरों में से किसी को भी सिर्फ इसलिए कोई स्थायी नुकसान नहीं होता था क्योंकि वे ताकत में बराबर नहीं थे।
मैं रब्बियों को बहुत श्रेय देता हूं जो कम से कम इन नियमों के कारणों के बारे में अपनी समझ की कमी के बारे में अधिक स्पष्ट रहे हैं बजाय इसके कि वे ईसाई धर्म में व्याप्त महान रूपक व्याख्याएं बनाएं और हमें अत्यधिक संदिग्ध रास्तों पर ले जाएं। साथ ही रब्बियों की हमेशा से यह प्रवृत्ति रही है कि वे ईश्वर के नियमों और भविष्यवाणियों के सांसारिक भौतिक पक्ष को देखें न कि उनके स्वर्गीय आध्यात्मिक पक्ष को। आइए देखें कि क्या हम इस सब को थोड़े अलग कोण से देख सकते हैं।
यह कहना पर्याप्त है कि यह स्पष्ट है कि अवैध मिश्रण के ये नियम ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किए जा सकते ताकि इन चीजों को करने से जानवरों पौधों या मनुष्यों को शारीरिक दृष्टिकोण से लाभ हो। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि दो अलग अलग प्रकार के बीजों को एक साथ बोने से कोई बुराई नहीं होती है। जब ऊन के साथ लिनन का धागा मिलाया जाता है तो दुष्टता अपने आप नहीं फूटती है और गधे और बैल को एक ही हल्के जुए में बांधना शैतानी रूप से अमानवीय नहीं है। इस वास्तविकता से हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे चर्चा की है कि बाइबल के हर प्रयास से विद्वानों ने यह समझाने के लिए कि क्यों कुछ जानवरों को परमेश्वर ने धार्मिक रूप से शुद्ध घोषित किया है जबकि अन्य को धार्मिक रूप से अशुद्ध घोषित किया है निराश हो गए हैं। हर बार जब वे कोई तर्कसंगत या वैज्ञानिक प्रणाली लेकर आते हैं तो शास्त्रों में कुछ और उसे खारिज कर देता है। कुछ खाद्य पदार्थ कोशेर क्यों हैं लेकिन अन्य नहीं? बकरी की बलि देना ठीक क्यों है लेकिन सुअर की नहीं? परमेश्वर को बैल की बलि क्यों दी जा सकती है लेकिन ऊंट की नहीं? क्या खुर फटे न होने या जुगाली न करने के कारण वह जानवर पवित्रता के उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है? जैसा कि राशि अवैध मिश्रण के चार नियमों के बारे में कहते हैं, ईश्वर सर्वोच्च है, उसने इसे निर्धारित किया है, और इन नियमों का पालन करने के लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि क्यों। वास्तव में मैं यह मानता हूं कि बाइबल में क्यों उसकी खोज अधिकांश मामलों में बड़े पैमाने पर एक बकवास है। ईश्वर के अनुयायियों के लिए मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन सा, किसी भी परिस्थिति में कौन सा पैटर्न या व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए, यह मायने रखता है, न कि यह कि ईश्वर ने उस व्यवस्था को क्यों निर्धारित किया। मैं आगे कहता हूं कि कोशेर खाद्य व्यवस्था और बलि के लिए उपयुक्त माने जाने वाले जानवरों के व्यवस्था की तरह अवैध मिश्रण के ये व्यवस्था कुछ अपरिवर्तनीय आध्यात्मिक सिद्धांतों को भौतिक रूप से दर्शाते हैं। यह चित्रण है और उनसे जो सीखा जाता है वही बात है। ऐसा नहीं है कि क्रियाएं या सामग्री या जीव स्वयं सिद्धांत हैं, यह वह है जो वे प्रदर्शित करते हैं जो सिद्धांत है। अगले सप्ताह हम पवित्र शास्त्र, पुराने नियम और नए नियम में कुछ ऐसे संबंधों पर विचार करेंगे जो अवैध मिश्रण, कामुकता और व्यभिचार को आपस में जोड़ते हैं।